ब्रह्मा कुमार दादा चंद्रहास जी कहते हैं कि हम मम्मा के दूर के संबंधी थे। छोटेपन से ही हमारा उनके घर में आना जाना होता था। जब मम्मा बाबा के सामने आई तो हमें आश्चर्य हुआ कि यह वही राधे है जिनको हम स्टूडेंट लाइफ में देखते थे। बाबा के महावाक्य कानों में पड़ते ही जीवन में धारण कर लेती थी। मम्मा की याद आती है तो हमें क्या कहें, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। मन उनके स्नेह में गदगद हो जाता है।
कानपुर के सुप्रसिद्ध वकील राता संत राम जी कहते हैं कि मम्मा के कलकत्ता प्रवास के समय एक बड़ा अनाज का थोक मारवाड़ी व्यापारी सट्टे में बड़े घाटे के कारण जीव घात करने के विषय में सोच रहा था। मैंने उसे बताया कि इस समय तुम्हारे ही भाग्य से जगदम्बा सरस्वती, जिनका मंदिर यहाँ काली माँ के रूप में स्थित है, चैतन्य में तुम्हारी नगरी में पधारी हुई है, अतः उन्हें अपनी परिस्थिति व वेदना बताकर निराकरण पा लो। जब वह व्यक्ति मम्मा के सामने आया तो मम्मा ने उसे शक्तिशाली एवं रूहानी प्यार भरी दृष्टि दी तथा मुस्कुराकर बोली, बच्चे यह जीवन तो हार जीत का एक खेल है। इसमें कोई भी आत्मा सुख दुख हार जीत मान अपमान स्तुति निंदा से होती हो ही नहीं सकती। फिर बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो, योगाभ्यास करो, दृष्टि होकर कार्य व्यवहार करते रहो तो स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। वह मम्मा की यह मीठी लोरी सुनता जा रहा था तथा उसके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे थे। मम्मा ने पुनः मीठी रूहानी दृष्टि देकर उसके दिल की पीड़ा हर ली। उसके बाद वह नियमित क्लास में आता रहा। कुछ वर्ष पश्चात जब मैं इलाहाबाद में कुंभ के मेले की सेवा पर उपस्थित था तो एक दिन अचानक वही व्यक्ति अपनी कार से उतर कर आ गया एवं मुझे पुरानी स्मृति दिलाई। पुनः वह हर प्रकार से स्वस्थ संपन्न तथा सुखी हो गया था एवं बार बार मीठी मम्मा के उन ढांढस देने वाले शब्दों को याद कर रहा था जिन्होंने उसमें नया जीवन फूंक दिया था।
अक्टूबर 1956 में मधुबन में मम्मा से प्रथम मिलन में ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मेरी बहुत समय की बिछड़ी हुई माँ मुझे मिल गई हो। उनकी दृष्टि इतनी निर्मल स्नेहमयी तथा शक्तिशाली थी कि अपलक नेत्रों से देखता रहा, समय की विस्मृति हो गई थी। वास्तव में उनसे अवतरित देवी की भासना आ रही थी जो पवित्रता सर्व दिव्य गुणों एवं धारणाओं से संपन्न हो इस पतित दुनिया को पावन बनाने हेतु अवतरित हुई हो। उनकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। वह जीती जागती आध्यात्मिक चुंबक अनुभव हो रही थी। मम्मा कहती थी कि शिव बाबा की मुरली जीवन को संपूर्ण एवं संपन्न बनाने का एकमात्र साधन है। अभ्यास तथा गहन मनन चिंतन के कारण ईश्वरीय ज्ञान पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया था। वह किसी भी ज्ञान बिंदु को संपूर्ण अधिकार से समझाती थी जिससे सुनने वाले को उसकी यथार्थता के विषय में सहज निश्चय हो जाता था, उसके संशय दूर हो जाते थे। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था किंतु वह निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। मन मना भव मध्याजी भव के महामंत्र को वह स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थी। मातेश्वरी जी अंतर्मुखता, गुण ग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुखता, प्रसन्नता, शालीनता, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि सर्व गुणों की साक्षात चैतन्य मूर्ति थी। वह यज्ञ वत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जानी जाननहार ऑल माइटी अथॉरिटी की, अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित होकर हाथ पैर चलाने हैं। मम्मा ने मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई महामंत्र के अति गुह्यतम राज को पूर्ण रीति से परख कर इसकी सत्यता का अनुभव कर लिया था। देह के संबंधों एवं दैहिक जगत से उनकी संपूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई थी। वह देह में रहते हुए भी सर्वथा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई फरिश्ता बनकर कार्य करती थी। उनके हर श्वास वह संकल्प में शिव बाबा ही समाया हुआ था,
हमेशा शिव बाबा की ओर ही उनका इशारा होता था।
एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि मम्मा आप तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही हैं, आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? मम्मा मुस्कुराई और बोली, बच्चे इस समय तो हर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का मुख्य पुरुषार्थ यही है कि निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बिंदु रूप शिव बाप को याद करना, उसको करावन हार व स्वयं को निमित समझकर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी पुरुषार्थ में व्यस्त रहती हैं। सचमुच 1965 में ही मातेश्वरी जी ने चारों विषयों के सार को गहराई तक अनुभव कर लिया था। इसी आधार पर सतयुग की प्रथम विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर वे विश्व में सतो प्रधान राज्य प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने के निमित्त बनेंगी।
पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी कहती हैं कि मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार बाबा की पॉइंट सुनी वह छप गई, राज में राज खोलती जाती थी, हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा एक घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें।
वह दिन में 3 बार मुरली पढ़ा करती थी, कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी।
मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। मम्मा अगर किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी किसी के वश का काम नहीं। प्यार सबके साथ मम्मा का इतना था कि दिल में ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तू ममता की मूर्ति है।
सभी प्यार से ओत प्रोत हो जाते थे,
उतना ही मम्मा निर्मोही थी। क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो।
मम्मा सबके साथ होते हुए भी शिव बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी।
मम्मा को वाद विवाद में कोई हरा नहीं सकता था। एक बार कराची के जिला अधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। पंजाब जोन के
भूतपूर्व
इंचार्ज भ्राता अमीर चंद जी कहते हैं कि जब मम्मा सामने बैठती थी तो जैसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विधेय अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वह सब सहज ही हो जाता था। मातेश्वरी जी में परखने की शक्ति बहुत थी। जब मैं उनसे मधुबन में पहली बार दिसंबर 1959 में मिला तो मिलते ही मातेश्वरी जी ने कहा कि यह तो ज्ञानी बच्चा है। उससे पहले मैं ध्यान में जाता था, खेल पाल करता था, भविष्य नजारे देखता था, लेकिन जब मातेश्वरी जी से मिलकर वापस करनाल गया तो मेरा वो ध्यान का पाठ खत्म हो गया। आज तक पुनः एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रकार मम्मा के बोल मेरे लिए वरदान बन गए। अंतिम मुलाकात में बताया गया था कि मातेश्वरी जी की तबीयत बहुत खराब है, कोई बात न करे। उस समय भी उनका चेहरा, उनकी दृष्टि, उनका तेज उतना ही शक्तिशाली था। उनके स्नेह स्वरूप और व्यवहार में लेश मात्र अंतर नहीं था। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ कि वे प्रकृति जीत हैं।
अज्ञानी लोग भी उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे तथा चरण स्पर्श करते थे। उन्हें वे एक विशेष महात्मा नजर आती थी। मातेश्वरी जी उनको भी अपनी स्नेह भरी करुणामयी दृष्टि से निहाल करती थी। मैं उस समय 19 वर्ष का था। मैंने पूछा, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा, ब्राह्मण मना संपूर्ण समर्पित, सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा या व्यवहार केवल निमित्त है और बाबा की सेवा के लिए है, मेरा कुछ नहीं। उनके ये वचन मेरे लिए वरदान बन गए। मैं इन वचनों को जीवन भर साथ लेकर चल रहा हूँ। मातेश्वरी जी के चलने फिरने में रिंचक मात्र भी आवाज नहीं होती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला उनसे प्रभावित होता था। वे शालीनता की संपूर्ण मूर्ति थी। यद्यपि इस यज्ञ में मातेश्वरी जी बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, फिर भी कहती थी कि किसी को भी मम्मा से किसी भी बात के लिए मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। सदा उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और लोग भी करेंगे। आवाज से हंसते हुए उनको मैंने कभी नहीं देखा। रोज बाबा के क्लास में आने से पहले मम्मा को क्लास कराना पड़ता था।
मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो।
उस समय इतनी शांति होती थी कि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई पड़े। क्लास के बीच से कोई उठकर बाहर चला जाए यह असंभव था। जैसे ही बाबा के खड़ाओं की आवाज सुनती थी तो वे तुरंत अपनी वाणी को विराम दे देती थी।
जाने माने पत्रकार एवं लेखक ब्रह्मा कुमार भ्राता राम ऋषि शुक्ल जी लिखते हैं कि सन 1956 में प्रथम मिलन में ही एक गुप्त चमत्कार हो गया। मैंने जैसे प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं स्थूल नेत्रों से निराकार शिव बाबा को वृत्ताकार में बाबा मम्मा के पीछे देखा। उस दिन से ही यह मुझे दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो गया कि निराकार परमात्मा शिव ने विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के निमित्त बाबा मम्मा को बनाया है। एक बार तो मातेश्वरी जी ने विनम्रता की हद कर दी। उनसे मिलाने के लिए मैं अपने एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र को ले आया, जो उच्च शासकीय अधिकारी भी था और मातृभक्त भी था। प्रवेश करते ही मातेश्वरी जी ने गद्दी पर उनको बैठा दिया। हम दोनों एकदम स्तब्ध और अवाक रह गए। वह मित्र भी समझ नहीं पाए कि क्या करें। माँ के आदेश को बच्चा टाल ही कैसे सकता था। भोपाल से ब्रह्मा कुमार भ्राता महेंद्र जी कहते हैं कि हमारी प्यारी मीठी जगदम्बा माँ के कर्तव्यों की स्मृतियाँ भुलाई नहीं भूलती। जब कभी एकांत में बैठता हूँ तो प्यारी माँ की मीठी शिक्षा प्रद लोरियाँ दिल को झकझोर देती हैं। कैसा कठोर परिश्रम किया है और कितनी आत्माओं के जीवन को आनंदित किया है उन्होंने। मातेश्वरी जी के तीन रूप दिखाई देते हैं, सरस्वती के रूप में विद्या की देवी, ज्ञान धन बांटने वाली लक्ष्मी और आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली दुर्गा। यह रहस्य भक्त नहीं जान पाएंगे कि जगदम्बा पृथ्वी पर आई और चली भी गई, हम पूजा और गुणगान ही करते रह गए।
उनके प्रवचन सुनते हुए ऐसी अनुभूति होती थी मानो साक्षात सरस्वती की ज्ञान वीड़ा बज रही हो। बस सुनते रहें। प्यारी माँ के बोल दिल में समा जाते थे। फलस्वरूप अल्पायु में ही जीवन सेवा में समर्पित किया। हजारों कठिनाइयां आई परंतु मम्मा के वचनों और पुष्प पत्रों ने जीवन को सरल कर दिया।
मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था।
छोटों से भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करती थी। यज्ञ में लाखों विघ्न आए पर न मम्मा कभी मन से रोई और न ही आंखों से। उनका कहना था कि रोने से सहन शक्ति घटती है। वह किसी की भी गलती को किसी अन्य को नहीं बताती थी, उसे सागर की तरह संभाल लेती थी।
जब यज्ञ में बेगरी पाठ आया तब मम्मा को खाना मिले न मिले उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अचल अटल विश्वास छलकता था। हमने तो जिंदगी में मम्मा में नाराजगी कभी देखी ही नहीं। घर में जैसे माँ बच्चे की हर बात पर ध्यान देती है। उसी प्रकार मम्मा यज्ञवत्सों के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हर संभव ध्यान देती थी। प्यार दुलार से पोषण कर हर यज्ञवत्स का दिल जीत लेती थी।
उन्होंने हर एक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया।